ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തീസരാ സ്കന്ധ അധ്യായ ക്രമാങ്ക് 32. ഇസ്ക ശീർഷക് ഹൈ കർമ്മബന്ധൻ. ശ്ലോക ക്രമാങ്ക് തീസരാ. തച്ഛദ്വയാക്രാന്തമതി പിതൃദേവവ്രതഃ പുമാൻ ഗത്വാ ചന്ദ്രമാം ചന്ദ്രമസം ലോകം സോമപാപുരനേദ്ധ്യസ്തി. താത്പര്യ തഥാ അനുവാദ് ശ്രീ എസി ഭക്തിദാന്ത സ്വാമി ശുപാത് കി. ഐസേ ഭൗതികവാദി വ്യക്തി ഇന്ദ്രതൃപ്തി സേ ആകൃഷ്ട ഹോകർ ഏവം അപ്നെ പിത്രോ ഏവം ദേവതാവോ കെ പ്രതി ഭക്തിഭാവ റക്കർ ചന്ദ്രലോകോ ജാ സക്തേ ഹൈ ജഹാ വേ സോമരസ് കാ പാൻ കർത്തേ ഹൈ ഔർ ഫിർ സേ ഇസി ലോക മേ ലൗട്ട് ആത്തേ ഹൈ. താത്പര്യ ചന്ദ്രമാക്കോ സ്വർഗ കാ ഏക ലോക മാന ജാതാ ഹൈ വിഭിന്ന ദേവ വിഹീന യജ്ഞോ വിഭിന്ന വേദ വിഹീന യജ്ഞോ യഥാ ദേവോ ഏവം പിത്രോ കീ പൂജ സമ്പന്ന കർണേ പർ മനുഷ്യ ഇസ് ലോക കോ ജാതാ ഹൈ കിന്തു കോയി യഹാ അധിക കാല തക് നഹീ രഹ പാതാ. ദേവതാവോ കീ ഗണന കേ അനുസാര ചന്ദ്രമാ പർ ജീവൻ കീ അവധി 10,000 വർഷ ഹൈ. ദേവതാവോ കീ കാല ഗണന മേ ഏക ദിൻ 12 ഘണ്ടെ ഇസ് ലോക കെ 6 മാസ കെ ബരാബർ ഹോത്തെ ഹൈ. ചന്ദ്രമാ തക് സ്പുട്നിക് ജൈസെ കിസി ഭൗതിക യാന ദ്വാരാ ഹി പഹുഞ്ചാ ജാ നഹി സക്താ കിന്തു പുണ്യകർമ്മ കർനേ സേ ഭൗതിക ഭോഗോ കെ പ്രതി ആസക്ത ലോക വഹാ പഹുഞ്ച സക്തേ ഹൈ. ജബ് യജ്ഞ കർമ്മോ കാ പുണ്യ സമാപ്ത ഹോ ജാതാ ഹൈ തോ ചന്ദ്രലോക തക് പഹുഞ്ച ജാനെ പർ ഭി മനുഷ്യ കോ പൃഥ്വി പർ പുനഃ ആനാ പഡതാ ഹൈ. ഇസ്കി പുഷ്ടി ഭഗവത്ഗീത 9 അധ്യായ 21 ക്രമാങ്ക ശ്ലോക മേ ഭി ഹുയി ഹൈ. തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യ മൃത്യുലോകം വിശന്തി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം മേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. തോ യഹാ ജെസേ ഹം ലോക് ദേഖതേ കി കപിൽദേവ് അപ്നേ മാ കോ ജോ ഹൈ കർമ്മ ബന്ധൻ കേ ബാരേ മേ ബതാ രഹേ. തോ ഇസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ ഹം ദേഖതേ അഭി ആധുനിക ജഗത് ഭീ ഹൈ ബഹുത് ലോക ജോ ഹൈ ഭൗതിക പ്രഗതി കാ വോ യേ ലഗാതേ നാരാ ലഗാതേ ഹൈ. അഭി വൃന്ദാവൻ മേ ഭീ ദേഖതേ കി ബഹുത് സാരേ ഭൗതിക പ്രഗതി ബനാനേ കാ വോ പ്രയാസ് കർ രഹേ. തോ യഹാ ദേഖേംഗേ കി യഹാ വോ ബതാ രഹേ കി ഐസേ ഥോഡേ ലോക ഹൈ ജോ ക്യാ കർതേ ഹൈ ഭൗതികവാദി വ്യക്തി ഇന്ദ്രതൃപ്തി സേ ആകൃഷ്ട ഹോകർ വോ അപ്നേ പിത്രോ കി യഹാ ചന്ദ്രമാ വഹാ ജാനാ ചാതേ ജഹാ സോമരസ ഉൻകോ പീനേ കോ മിൽതാ ഹൈ ലേക്കിൻ വഹാ ഉൻകാ പുണ്യ കർമ്മ ഹോതേ ഹീ ഉൻകോ ഫിർ സേ ഇസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ ആനാ പഡതാ ഹൈ. തോ ഭഗവത്ഗീത മേ ഭീ ശ്ലോക ആതാ ഹൈ ജിസ്മേ 8 അധ്യായ മേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബതാതേ ഹൈ 16 ശ്ലോക ഹൈ. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവൃത്തിനോ അർജുന മാം ഉപേത്യതോ കൗന്തേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. തോ ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക അർത്ഥ ഹോതാ ഹൈ കി ഇസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ ഹരേക് ബ്രഹ്മാണ്ഡ മേ 14 ലോക ഹൈ. കഹാ ഭീ ജായേംഗേ തോ ഏക വ്യക്തി കോ ബഹുത് ലൗട്ട് കേസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ ആനാ പഡേഗാ. തോ ഇസ് പ്രകാര ദേഖതേ കി അനാദി കാല സേ ജഹാ ഭീ ലോക ഇസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ അലഗ് അലഗ് കർമ്മ കാണ്ഡ മേ ലഗേ ഹുവേ ഹൈ തോ ഐസേ വ്യക്തി കോ വഹാ വോ ജ്യാദാ സമയ തക് രഹ നഹീ സക്താ. തോ ഭൗതിക ജഗത് മേ ഹം ദേഖതേ ഹൈ കി ഐസേ ജോ യോനിയോ കോ തീന പ്രമുഖ ഇസ് മേ വിഭാജിത് കിയാ ഹൈ. തോ ജോ സ്വർഗ ലോക മേ ജോ ഭോഗ കർതേ ഹൈ ഉൻകോ ഭോഗ യോനി കഹാ ജാതാ ഹൈ ഔർ ഭൗതിക ജഗത് മേ ജിത്നി ഭീ യോനിയാ ഉൻകോ കർമ്മ യോനി ഖാസ് കർകേ മനുഷ്യ കോ ഔർ ബാക്കി ജിത്നി ഭീ ജീവ ഹൈ ഉൻകോ തുച്ഛ യോനി കഹാ ജാതാ ഹൈ. തോ ഭൗതിക ജഗത് മേ ലോക ബഹുത് സാരാ പ്രയാസ് കർതേ ഹൈ പുണ്യ കാര്യ കർകേ ഔർ വോ യഹീ പ്രയാസ് രഖതേ ഹൈ കി ഹം ലോക ജായേംഗേ സ്വർഗ ലോക മേ വഹാ സാക്ഷാത് വഹീ രഹേംഗേ ലേക്കിൻ ഐസാ നഹീ ഹോതാ ഹൈ. तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान लगभग 10 श्लोकों में ये देवी देवताओं का पूजन और उन लोगों का किस प्रकार इस भौतिक जगत में आना होता है उसके बारे में बताते हैं। तो पहले भगवान बताते हैं 4वें अध्याय में, कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजंती है देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो इस भौतिक जगत में जो लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और क्षिप्रम तुरंत ही उनको क्या मिल जाता है कि उसका फल मिलता है। लेकिन क्या होता है कि वो उस वहां जाने के पश्चात भी उनको यहां फिर से वापिस आना पड़ता है। तो आगे कृष्ण भगवान बताते हैं, दैवम एपाप्र यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेश्वर उपजह्यति। तो यहां वो बताते हैं कि थोड़े ऐसे योगीगण होते हैं, हालांकि वो अच्छी तरह देवताओं की पूजा वगैरह करते हैं और अलग अलग प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो परम ब्रह्मन को ही अर्पित कर रहे। तो फिर 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान बताते हैं, कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंतम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वय। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि जिन लोगों की जो है बुद्धि काम वासना से हर ली गई है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं के शरण जाते हैं और इस प्रकार वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के विधि विधान। तो आप देखते हैं कि भौतिक जगत में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे व्रत रखते हैं। हाल ही में मैं एक ट्रेन से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति बता रहे थे, मेरी पत्नी हफ्ते में 5 व्रत रखती है। तो मैंने उसको पूछा नहीं कौन से व्रत है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार के व्रत रखते हैं और इस प्रकार वो क्या करते हैं कि इन देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी का बहुत लोग ये करते हैं, पूजा करते हैं और एक किसी ने एक भजन भी लिखा है गणेश जी का, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। हालांकि कृष्ण भगवान बताते हैं मत्त परतनम, भगवान कृष्ण से कोई बड़े है नहीं, लेकिन इन लोगों ने गणपति को बड़ा कर दिया और आपके भक्तों में हमसे बढ़कर कौन। वो बताते कि आपके भक्तों में हमसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भी लोग हैं। फिर अलग अलग देवताओं की लोग उपासना करते हैं। तो आगे 21वें अध्याय में 21वां श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं, यो योम यम यम तनु भक्त श्रद्धायन अर्चितम इच्छति तस्य श्रद्धादलम तम एव विदध्याम अहम। तो भगवान बताते हैं कृष्ण भगवान कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं और जो भी व्यक्ति जो भी कामना वासना या इच्छा करता है तो मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूं और इस प्रकार वो व्यक्ति उस देवता के प्रति आकर्षित होके उस देवता की वो पूजन करता है। तो भौतिक जगत में हम देखेंगे कि भारत में खास करके सोमवार से लेकर लोग रविवार तक अलग अलग देवताओं के मंदिर जाते हैं कि नहीं, कभी कभी संडे हरे कृष्णा मंदिर आ जाते हैं। तो सबका यानी हर एक गांव में कहीं भी गांव में जाओ अलग अलग प्रकार के मंदिर है। लोग सोमवार को शिव जी के पास जाते हैं, मंगलवार गणेश जी के पास जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जो पूरा हफ्ता जो है अलग अलग जगह लोग जाते रहते हैं। तो ये वास्तविक में आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान ही क्या कर रहे हैं कि उनकी इच्छा देवताओं के द्वारा वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है वो जानते नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख आता है, एक राजा पुरुरव करके थे और उनको जो है उर्वशी के प्रति काफी आकर्षण था। तो ये राजा पुरुरव ने भी जो एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में भी उसने क्या आहुति दिया कि ये भगवान मुझे जो है अगला जन्म जो है गंधर्व लोक में दे दो जहां उर्वशी रहती है। तो इस प्रकार भौतिक जगत में जो काम वासना से ज्यादा मोहित रहते हैं तो कृपा जी बताते हैं कि ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के उपासना वगैरह करते हैं। तो आगे 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान बताते हैं, स तस्य श्रद्धा युक्त तस्याहृदम इहते लभते च तथा कामन मय्येव विहितान हि वान। तो भगवान बताते हैं कि इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार उस देवताओं की पूजा करने के पश्चात उसको जो भी भौतिक इच्छा है उसकी भगवान वो देवता उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। हालांकि ये सब कुछ मेरे द्वारा ही दिया जाता है, यानी कृष्ण भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। फिर आगे कृष्ण भगवान बताते अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेदसाम देवान देव इजे यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। तो यहां जो देवताओं के उपासक है तो उनको क्या कहा जाता है, अल्पमेदसाम। मेदसाम माने कम बुद्धि वाले। तो आपने सुमेध सुना होगा कि सुमेधसाम का अर्थ होता है जो बुद्धिमान लोग हैं। तो इसमें भागवतम में उल्लेख आता है कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो यहां जो देवी देवताओं के जो उपासक है उनको अल्प बुद्धि वाले बताया जाता है। तो कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, हालांकि वो जो भी देवताओं से आकांक्षा करते हैं वो कुछ समय के लिए होता है, और उसके पश्चात जो है वो लोग जो है जो भी देवताओं की उपासना करते हैं तो उस देवताओं के वहां ग्रह में वो चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो उनकी पूजा करते हैं वो फिर गोलोक धाम चले जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिरण्यकश्यप है, जब हिरण्यकश्यप वो अपना व्रत कर रहे थे तो उन्होंने इतना कठोर व्रत किया था 1000 साल के लिए, और उस वक्त जब भी ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को उसने कहा कि मैं अमर बनना चाहता हूं। हालांकि ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर बना सकता हूं। तो फिर आप देखते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अलग अलग प्रकार के जो है उनसे याचना की कि मुझे मेरी दिन में मृत्यु नहीं होना चाहिए, रात में, जमीन पर, आसमान में, किसी भी प्रकार के अस्त्र से। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अमर बनना चाहता है, लेकिन ये यानी इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। हालांकि प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर एक व्यक्ति अगर इस स्पुटनिक या अपोलो कोई यान से अगर चांद के ऊपर जाना चाहता है नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं। अगर आप देखते हैं कि पिछले 50 साल से 1960 से जो है हम देखते हैं कि अमेरिका, रशिया, इतर देश के भी लोग हैं वो लोग चांद के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे, लोगों को अच्छी तरह मूर्ख बना रहे। हालांकि लोगों से उन्होंने करोड़ों में डॉलर्स जो है उस वक्त ये कर लिया था, उन्होंने उनको लोगों को कहा था कि आप वहां अपना हनीमून करने के लिए जा सकते हैं, वहां हम लोग हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, आपके लिए प्लॉट भी दे सकते हैं, आप अपना घर भी बांध सकते हैं। तो जिन्होंने वहां पैसा भरा था वो लोग सब लोग मर भी गए। उस वक्त वो लोग जो है 50-30 साल के थे, तो अभी हालांकि 50 साल हो गए। तो हाल ही में अमेरिका वालों ने फिर एक अभी चांद कुछ भूल गए तो अभी दूसरे मंगल ग्रह के ऊपर वो जाने का बता रहे। तो हाल ही में एक अमेरिका वालों का एक ये आया था, वो बता रहे थे कि 2020 में हम लोग फिर से चांद के ऊपर जा रहे हैं। तो इस प्रकार भौतिक जगत में हम देखते कि ये जो है वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि यंत्र के द्वारा एक व्यक्ति नहीं जा सकता, उसके लिए जो है एक व्यक्ति को जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञ या देवताओं की उपासना करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे आप लोग मेले में जाते हैं, एक गोल चक्कर होता है, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसको फेरिस व्हील कहते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, जब भी ऊपर जाता है थोड़ा मजा आता है, जब भी नीचे आता है तो बड़ा डर लगता है। तो मेले में जाते हैं बच्चे, उसमें काफी आनंद लेते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जननी जठरे शयनम। इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति कहां भी जाएगा तो उसको भौतिक जगत में यहां लौट के आना पड़ेगा। जिसमें थोड़े लोग कहते हैं जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वह कहां तक दौड़ लगाएगा, मस्जिद तक। तो इस प्रकार यहां वास्तविक में देखेंगे कि भौतिक जगत में जितने भी लोग देवताओं की उपासना कर रहे हालांकि कम बुद्धि वाले हैं, तो इस प्रकार ये नहीं समझते कि वो जो कर रहे वो उनको बंधन में ही डाल रहा है। आगे कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, आज का जो श्लोक है इसी से संबंधित है। त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पाप यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते तम पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिवि देव भोगान। तो अभी इस प्रकार भगवान बताते हैं कि जो लोग तीन प्रकार के वेदों का अभ्यास करते हैं, त्रय विद्या कर्मकांड, उपासन कांड, ज्ञान कांड, तो इनकी जो लोग ये करते हैं पूजा उपासना करते हैं तो वो कहां जाना चाहते हैं, इस जो 7 लोग हैं ऊपर, हाँ वहां जो है वो किसके लिए जाना चाहते हैं, सोम रस पीने के लिए। और इस प्रकार वहां वो स्वर्ग में रहते हैं, और वहां बताया जाता है कि कुछ समय के लिए वो लोग स्वर्ग में रहते हैं इंद्रलोक या चंद्रलोक में, और वहां वो थोड़ा अच्छा भोग प्रकार का भोग कर सकते हैं, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं। तो भौतिक जगत में भी प्रभुपाद जी एक, अभी प्रभुपाद जी का एक मैं लेक्चर सुन रहा था, 9वें अध्याय का ये, इसी के ऊपर। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यूरोप अमेरिका जाना चाहते हैं, काफी लोग इस्कॉन में भी आते हैं अमेरिका जाने के लिए, हम मोरा यही अभिलाष। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका जाएंगे ग्रीन कार्ड मिलेगा तो हम वहां शाश्वत रहेंगे, ऐसी बात नहीं, वहां भी मृत्यु होती है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में जाने से हमारा जीवन और ज्यादा सुधर जाएगा, आयु बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो भौतिक जगत में कहीं भी एक व्यक्ति जाएगा तो मृत्यु तो होनी है। तो स्वर्ग में भी वहां का जो है प्रभुपाद जी समय बताते हैं कि यहां के जो 6 महीने है वहां कितने दिन के समान है, कितने साल के समान है, 6 महीने के समान है। तो स्वर्ग लोक में जो देवताओं की आयु होती है वहां की जो आयु है 10,000 साल। और जब ये सब इसका ब्रह्मांड का नाश होता है तो सबको फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि फिर जो है इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेना होता है, फिर जब ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति स्वर्ग में कहीं भी चला जाएगा तो जो है कहीं बच नहीं पाएगा। तो ये खास करके भौतिक जगत में जो है अलग अलग प्रकार के लोग कामना करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो विद्या जैसे बताया जाता है, कर्म कांड जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए लोग प्रयास करते हैं, फिर उपासना कांड का होता है कि अलग अलग देवताओं की उपासना करना। थोड़े आप देखेंगे आप वृंदावन में भी दिखाई देगा सहस्र चंडी यज्ञ, अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ करते हैं लोग। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के उपासना है। फिर ज्ञान कांड, अष्टांग योग या अलग अलग प्रकार के लोग जो है अपने वो ये करते हैं, उनके अपने जैसे दिमाग को ठीक लगता है इस प्रकार के वो लोग अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है ज्ञान कांड। तो लेकिन हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर वो क्या बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है उन्होंने क्या कहा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। वो बताते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड जो है एक जो है किसका घड़ा है, एक जो है विष का घड़ा है। तो आगे बताते हैं कि ये भौतिक जगत का जितना भी ये ज्ञान है ये तर्क ज्ञान है, लेकिन वो बताते हैं अमृत बलिया एव खाए नाना योनि सदा फिरे। वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग जो है जो जहर को अमृत समझ के वो पी लेते हैं और इस प्रकार जो है अलग अलग योनि में वो लोग भ्रमण करते हैं। और वो आगे बताते हैं कद्रया भक्षण करे, इस प्रकार वो जो है अलग अलग योनियों में वो क्या करते हैं अलग अलग प्रकार का यानी विष्ठा या गंदगी खा लेते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर उसको सुअर की योनि मिलती है तो उसको विष्ठा खानी पड़ती है, अगर एक व्यक्ति अगर कौवा बनता है तो कौवे को है जो गंदगी खानी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति ये कर्म कांड या उपासना कांड में जाता है तो वो ये नहीं समझते कि फिर से भौतिक जगत में उनको लौट आना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत में जैसे 14 जगत है कहीं भी जाओ तो एक व्यक्ति उसको वापस यहां इधर ही आना पड़ेगा। तो आगे उसी में 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान बताते ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुपपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। तो यहां कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब ही उन लोगों ने स्वर्ग में अपना सब कुछ पुण्य उसको उन्होंने ये कर लिया भोग कर लिया और जैसे उनके पुण्य खत्म हो जाते फिर वो लौट के इस भौतिक जगत में आते। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं तो इस प्रकार ये लोग जो है ये 3 वेद और विष के अंदर वो क्या बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहते हैं। आब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। तो कृष्ण भगवान गीता में भी बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। तो भौतिक जगत में ये जो है लोग जो है इसी में जो है लगे हुए हैं। तो वास्तविक में आगे भगवान बताते हैं ये पे अन्य देवता भक्त यजंते श्रद्धयान्वित तेपि माम एव कौन्तेय यन्ति अभिधि पूर्वक। तो कृष्ण भगवान बता रहे कि जो लोग अन्य देवताओं की जो पूजा कर रहे हालांकि वो मेरी पूजा करते लेकिन अविधि पूर्वक, हालांकि मुझे वो नहीं जानते कि ये अविधि पूर्वक हो रहा है। आगे भगवद्गीता में एक काफी प्रसिद्ध श्लोक है यान्ति देव वृता देवान पितृ न्यान्ति पित्रोत भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोपि माम। तो भगवान बता दे तो जो भी देवताओं की उपासना करेगा तो व्यक्ति वहां उस स्वर्ग लोक में जहां भी वो जो भी देवताओं की उपासना करता है वहां चला जाएगा। पितृ न्यान्ति पितृवत, आज का इसमें श्लोक में आता है कि लोग जो है पितृओं की जो अगर पूजा वगैरह करते तो ऐसे लोगों का जो है वहां जन्म होगा। और भूतानि यान्ति भूतेज, जो भी अलग अलग प्रकार के मनुष्यों की पूजा करते वो लोग वहां चले जाएंगे। और जो भी व्यक्ति भूत पिशाच का पूजा करता है वहां चला जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण भगवान की उपासना करेगा पूजा करेगा तो ऐसे व्यक्ति लौट के भगवत धाम जाते। हालांकि भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक में 40 श्लोक आते हैं जिसमें कृष्ण भगवान अपने गोलोक धाम के बारे में बताते हैं। न तद्भाष्य से सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। आगे 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति तीन गुणों में रहते भौतिक जगत में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुणिवृत्तंस्त अधो गच्छन्ति तामस। तो इस प्रकार भौतिक जगत में तीन गुणों में जो है उसके असर से जो व्यक्ति सत्वगुण में होते वो स्वर्ग में चले जाते, जो लोग रजोगुण में होते वो भौतिक जगत में रहते, और जो लोग तमोगुण में होते हैं वो जो है अधम योनि में चले जाते। तो फिर 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसांते राजस प्रेतान भूतान गणाश्चान्य यजन्ते तामस जनम। तो बताते कि जो लोग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होते हैं ये लोग अलग अलग प्रकार के देवताओं की वो पूजा करते हैं। फिर वो इस प्रकार जो तामसिक जो लोग होते हैं वो भूत पिशाची की पूजा करते हैं, और जो रजोगुण में होते हैं वो असुरों की पूजा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे 1940 की बात है, तो उस वक्त जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो एक व्यक्ति जो है हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि उस वक्त अनाज की कीमत वगैरह सब बढ़ गई थी, तो व्यक्ति जो है वो उनकी असुरों की पूजा कर रहे थे। और जो सत्वगुण में ऐसे बताया था कि जो उपासक होते हैं वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते। तो ये जो है भौतिक जगत में अनादिकाल से आ रहा है। तो वास्तविक में देखेंगे कि भागवतम में उल्लेख आता है कि अलग अलग जो है लोगों को अलग अलग प्रकार के विधि विधान बताए। जैसे भागवतम में उल्लेख आता है कि एक व्यक्ति को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए अगर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शारीरिक बीमारी से दूर होना है। हाँ, अगर एक व्यक्ति को अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो उसको जो है उमा यानी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और आगे उल्लेख आता है अगर एक व्यक्ति को अच्छी तरह विद्या चाहिए तो उस व्यक्ति को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार भागवतम ने एक बड़ा लिस्ट दिया है, मार्केटिंग लिस्ट दिया है। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे शिवजी बताते पद्म पुराण में आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम उत्तमम। पार्वती को शिवजी बता रहे कि जो भी व्यक्ति आराधना यानी जो भी पूजा करता है तो उसमें वो बताते हैं कि विष्णु आराधनम उत्तमम यानी विष्णु भगवान की जो है भक्ति है वो उत्तम है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भागवतम में भी उल्लेख आता है कि अगर एक व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है तो उनके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। तो भागवतम में श्लोक आता है कि जिसमें उल्लेख आता है कि यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचन फिर सर्वे गुणस्तत्र समाते सुर हरौ अभक्तस्य कुटो महद्गुण मनोरथेनानि धावतो बहि। इसका अर्थ है कि जो भी भगवान के भक्त होते हैं खास करके कृष्ण भगवान के, उनके अंदर सब अच्छे सद्गुण होते हैं। एक वैष्णव के 26 गुण बताए जाते हैं। तो यहां श्लोक में उल्लेख आता है हरौ अभक्तस्य यानी जो हरि भगवान के भक्त नहीं है कुटो महद्गुण उसके अंदर कौन सा अच्छा गुण हो सकता है। मनोरथे नानि धावतो भाई तो वो अपने मन के वेग से यहां वहां भागता रहता है। मनोरथे नानि का अर्थ होता है कि उसका एक मन है वो एक रथ के समान है तो उसके ऊपर वो आरूढ़ होके इधर उधर घूमता रहता है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे शहरों में जैसे सुबह होती है तो हर एक व्यक्ति अपने कार्य में इधर उधर ऑफिस के लिए दौड़ते रहते हैं, चाहे आप दिल्ली जाओ बंबई जाओ कलकत्ता जाओ मद्रास जाओ अन्य देशों में भी जाओ। तो लोग क्या है कि अलग अलग दिशा में क्या कर रहे अपनी जो है मनोरथ के अनुसार वो अपनी कामना पूरी करने के लिए अलग अलग जगह वो जा रहे। तो लेकिन एक जो है भगवान का जो भक्त होता है तो ऐसे मनोकामना में वो नहीं लगता है, वो जो है भगवान के भक्ति में लगा रहता है। तो नारद मुनि जो है वो व्यास इसमें उल्लेख आता है, नारद मुनि जो है वो बताते हैं वसुदेव को श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उल्लेख आता है कि अगर एक व्यक्ति अगर कृष्ण भगवान की अगर पूजा करता है, भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति का कोई ऋण नहीं होता है। भौतिक जगत में ऐसे उल्लेख आता है कि हमारे 5 प्रकार के ऋण होते हैं, देवर्षि भूतात्म निणाम पितृणाम नायम किंकिणो न च ऋणी च राजन सर्वात्मन यह शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तव्यम। तो इसका अर्थ है कि भौतिक जगत में हमारे जैसे 5 ऋण होते हैं, खास करके मनुष्य के जन्म से ही, तो वो है देवताओं का, क्योंकि देवता लोग हमें जो भी आवश्यक जो चीज चाहिए वो देते हैं, पानी, प्रकाश, हवा, अनाज, ये सब कुछ हमें देवताओं के द्वारा मिलता है, तो उनके प्रति भी हमारा एक ऋण होता है। फिर ऋषि लोगों से हमें सब वेद पुराण ग्रंथ वगैरह मिलते हैं, तो उनके प्रति हमारा ऋण होता है। फिर हमारे पितृगण है, जिस परिवार में भी हमारा जन्म हुआ है, तो उनके लिए हमारा ऋण होता है। फिर इस समाज का भी एक ऋण होता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं हम अलग अलग प्रकार का कार्य ले रहे हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट की बिजली मिल रही है, हालांकि बहुत प्रकार के हम सेवा ले रहे हैं, टेलीफोन से लेके अलग अलग प्रकार से, तो अन्य लोगों से हम सेवा ले रहे हैं, वो एक ऋण होता है। फिर पशु जो है उनसे भी हम लोग सेवा लेते हैं, जैसे दूध, फिर एक कोई कुत्ता अपना घर का रखवाली करता है, पुराने जमाने में बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी होती थी, हाथी वगैरह अन्य जानवरों को लोग जो है इस्तेमाल करते थे सेवा में, तो इनके प्रति भी ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख करते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है का अर्थ होता है कि अगर हम कृष्ण भगवान के भक्ति में लग जाते हैं तो हमारे प्रति कोई ऋण नहीं बचता है, लेकिन हमें एक पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम भक्ति करते श्रद्धा शब्द विश्वास उसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम जब भी कृष्ण भगवान की आराधना कर रहे हैं तो हमें अभी दूसरे किसी की आराधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे उसमें 3 भाई थे, तो एक भाई थे माधव घोष, वसुदेव घोष और एक गोविंद घोष करके थे। तो ये जो गोविंद घोष करके थे उनके कोई संतान नहीं थे, तो एक बार वो भगवान को जो है उनके घर में जो विग्रह थे उनका नाम था गोपीनाथ, तो गोपीनाथ को उन्होंने भगवान को भोग लगाया था, भगवान को चामर कर रहे थे, तो क्योंकि हालांकि उनका कोई संतान नहीं था तो उन्होंने ऐसे एक मन में ऐसे एक विचार किया, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, जब भी मैं गुजर जाऊंगा तो मेरा कौन एक रहेगा पिंड दान वगैरह, ऐसे वो मन में विचार कर ही रहे थे। तो जो गोपीनाथ भगवान सामने खड़े थे तो भगवान ने कहा, हम तो आपके पुत्र के समान हैं, आप इसकी क्यों चिंता कर रहे हैं, आपका जो है पिंडदान हम ही करेंगे। अभी भी अगर आप जाओगे मायापुर, ये जब ये गोविंद घोष का 13वां दिवस होता है, तो अभी भी वहां जो है भगवान जो है उस दिन गोपीनाथ को सफेद वस्त्र पहनाते और वहां पुजारी आके जो है गोविंद घोष का उनका वो ये करते। तो इस प्रकार एक भक्त को जो है मालूम होना चाहिए कि कृष्ण भगवान जो है वो क्या करेंगे, अवश्य हमारा जो भी कार्य करना है वो पूर्ण करेंगे। हालांकि रामायण में भी जटायु का उल्लेख आता है, हालांकि राम भगवान जो है उनके पिताजी दशरथ का वो ये नहीं कर पाए अंतिम संस्कार, लेकिन उन्होंने जटायु का किया। तो जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हमें जो है इस भौतिक जगत में जो भी भौतिक कामनाएं है या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसकी चीज में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी तरह होना चाहिए, लेकिन जो भी हमें हमारे आचार्य ने जो भक्ति के अनुष्ठान दिए हैं वो हमें किसके लिए करना चाहिए, कृष्ण भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो वृंदावन में भी हम देखते हैं जो भी कृष्ण भगवान के पहले जो सहचर थे, तो काफी लोगों ने भी जो है उन्होंने भी जो है अन्य देवी देवताओं की भी उन्होंने पूजा किया है, उनकी उन्होंने जो है पूजा की है, लेकिन वो किसके लिए की थी, उन्होंने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे गोपियों का उल्लेख आता है, गोपियों ने जो है कात्यायनी का व्रत किया था किसके लिए, किसको श्लोक मालूम है, श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, कि वहां वो गोपियां कहती कि कात्यायनी को कहती कि हमें आप जो है कृष्ण जो है हमारे पति के रूप में दे दो। हाँ, तो उसके बाद में रुक्मिणी का भी उल्लेख आता है। रुक्मिणी जो है शादी उनका जब भी विवाह होने वाला था उससे पहले वो कहाँ गई थी, कौन से मंदिर गए थे? हाँ, दुर्गा दुर्गा के मंदिर गए थे। तो वहां भी उन्होंने जो है अंबा माता से जो है उन्होंने ये किया था। तो वृंदावन के लीलाओं में एक लीला आती है नंद महाराज की। तो वैसे बताया था कि नंद महाराज ने बद्री विशाल भगवान जो है उनसे उन्होंने एक संकल्प किया था, अगर मुझे एक पुत्र होगा तो मैं चल के बद्रीनाथ आऊंगा। तो वृंदावन में भी आदि बद्री है। तो जब कृष्ण भगवान बड़े हो गए तो लगभग 7 साल के हो गए थे, तो एक दिन नंद महाराज सब कुछ उनकी तैयारी हो गई थी वहां बद्रीनाथ चल के जाने की। तो फिर कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं अभी? तो उन्होंने कहा, अरे बेटा मैंने संकल्प किया था अगर मुझे एक पुत्र प्राप्त होगा तो मैं वहां बद्रीनाथ चल के जाऊंगा बद्री विशाल के पास। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे उतना दूर जाने की क्या जरूरी है, बद्रीनाथ हमारे वृंदावन में भी है। फिर कृष्ण भगवान जो है वहां उनको आदि बद्री वृंदावन में जो काम्यवन है उसके बगल में आदि बद्री है तो वहां लेके गए। तो ऐसे उल्लेख आता है मथुरा महात्म्य, अगर एक व्यक्ति काम्यवन में जाता है या बद्रीनाथ में तो यहां 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन भौतिक जगत में आजकल हम लोग देखते हैं लोग जो है वो क्या करते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल मनेर भ्रम। तो लोग जो है कलकत्ता से भी जो है वो गंगोत्री जाते हैं, हालांकि गंगा जी कलकत्ता में भी बहती है, वहां भी गंगा सागर है, लेकिन 2-2500 किलोमीटर वो लोग वहां आते हैं गंगोत्री में। तो वास्तविक में देखा जाए कि जो है जो यहां जो है जैसे मैं उल्लेख कर रहा था नंद महाराज का, तो उन्होंने भी कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए, फिर देवकी और वसुदेव का भी उल्लेख आता है। फिर हम देखते हैं ऋषभानु जो है और कीर्तिदा उन्होंने जाके जो है काम्यवन में किसकी उन्होंने उपासना की थी, पूजा किसी को मालूम है? कामेश्वर महादेव शिव जी का राधा रानी को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे थोड़े बहुत उल्लेख है, जैसे नंद महाराज का भी एक बार उल्लेख आता है कि एक बार नंद महाराज जो है एक बार अंबिकावन गए थे शिवरात्रि के दिन। तो नंद महाराज भी जो है वो कभी कभी जो है शिवरात्रि मनाते थे वो, तो लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि चलो हमें शिवलोक प्राप्त करना है, वो ये समझ कर उनकी पूजा करते थे कि ये जो है जो भगवान के पार्षद है इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो भागवतम में इनका भी उल्लेख आता है राजा भरत का। तो राजा भरत ने भी बहुत अलग अलग प्रकार के यज्ञ वगैरह सब कुछ वो करते थे, संबंध करते थे, लेकिन उनको मालूम था कि मैं ये जो सब कुछ यज्ञ कर रहा हूं अन्य देवी देवताओं के प्रति, लेकिन ये अंत में कृष्ण भगवान के प्रति है, तो उनको उनका उसका ज्ञान था। तो एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे, प्रभुपाद जी से कह रहे थे, प्रभुपाद जी मैं गणेश जी की पूजा करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको प्रतिदिन $1000 देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं प्रभुपाद जी इतना तो कमाई होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, फिर कोई जरूरी नहीं देवी देवताओं की पूजा करने का। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही एक अच्छा श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बताते कि कृष्ण कहे आमा भजे मागी विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मागी ए बड़ मूर्ख। तो अभी जो भी भक्ति में आते हैं, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य बताते हैं कि जब भी हम लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के पश्चात अगर भौतिक वासना या भौतिक अन्य देवी देवताओं का हम उपासना करते हैं तो यज्ञ में घी और पानी डालने के समान है। तो यहां कृष्ण भगवान क्या बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति मेरे भक्ति में लगता है और साथ साथ में अगर वो भौतिक चीजों की उपासना करता है या भौतिक चीजों के प्रति ये करता है इच्छा रखता है तो ऐसे व्यक्ति महामूर्ख है। वो कहते कि ये बड़ा मूर्ख है। तो बताते कि ऐसे व्यक्ति को मैं विषय सुख क्यों दूंगा, मैं जो है ऐसे व्यक्ति अगर जहर पीना चाहता है तो मैं उसको जहर क्यों दूंगा। हाँ, ये व्यक्ति जो है अमृत छोड़ के वो जहर पीना चाहता है तो क्या आगे वो मैं क्या बताता है, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय केने देवा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। वो बताते हैं कि ये व्यक्ति हालांकि वो भगवान बताते कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं ऐसे व्यक्ति को जो है भौतिक भोग क्यों दूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति को जो है अपना चरण कमल अपना चरण ये देखे, ऐसे व्यक्ति को मैं भौतिक भोग जो है वो उसको भुला दूंगा। तो भौतिक जगत पे हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी भौतिक सुख की हम लोग कामना करते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। जिसमें उल्लेख आता है, जैसे बलि महाराज, उनका जब ये बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो वहां जब ये वामन देव पहुंचे तो वामन देव ने बलि महाराज को जब कुछ तीन पद जमीन मांगे थे तो बलि महाराज उनको कह रहे थे, अरे मैं तो 14 जगत का राजा हूं, जो चाहिए मांगो। तो उस वक्त जो है बलि महाराज को जो है वामन देव कहते कि जो व्यक्ति जिसके इंद्रिय कंट्रोल काबू में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जो है उसको 14 जगत क्या पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में मिल जाए वो व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होगा। तो हम लोग देखते कि जितने भी देवी देवताओं के उपासक है आज तक बड़ा हिस्ट्री है कि उसमें वो लोग कभी तृप्त नहीं होते। हालांकि कभी कभी देवी देवताओं का उपासना करते हैं, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, गलतियां हो जाए तो उसका भी हमें रिएक्शन भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार जब भी हम लोग भक्ति में लगते हैं तो हमें ज्यादा करके देवी देवताओं का इसके उपासना के चक्कर में नहीं होना चाहिए। तो हमें एकमात्र प्रयास करना चाहिए कि जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो उल्लेख करते हैं कि वो बताते हैं, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रदान, जहां देखी प्रीत होन गौरव भगवान। तो वास्तविक में देखेंगे कि जो महाप्रभु के पार्षद है वो है वैराग्य प्रदान। वैराग्य प्रदान का अर्थ होता है कि वो भौतिक चीजों की कोई कामना नहीं करते। और जब भी चैतन्य महाप्रभु देखते कि उनके भक्त लोग है वो भौतिक चीजों को त्याग रहे तो चैतन्य महाप्रभु वो भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर ऐसे सार्वभौमा भट्टाचार्य वो भी उल्लेख करते, वो बताते कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका अवतरण किसके लिए हुआ है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। तो ये हमें एक वैराग्य विद्या इसलिए देने आया है कि हम सच्ची भक्ति क्या है वो समझ सके। तो यहां जो है खास करके कपिल देव अपने मां को बता रहे कि इस भौतिक जगत में जो लोग है भौतिकत्ववादी जो व्यक्ति होता है वो इंद्र तृप्ति से आकृष्ट होकर अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोम रस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में जो है एक व्यक्ति कहीं भी जाने का, किसी भी प्रकार से जाने का प्रयास करेगा तो उसको यही लौट के आना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो इस भौतिक जगत में हमें फिर वापस लौट के नहीं आना पड़ता है। हरे कृष्णा। किसी को कोई टीका है, प्रश्न है? हरे बोल। किसी को कोई प्रश्न टीका? तो भी क्लास को यहां विश्राम देते हैं। श्लोक रूपात की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्णा।